अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरिवावतिनैष्टके भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी हरि भक्तों एवं माताओं का हार्दिक स्वागत है। पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान के हरिनाम संकीर्तन एवं हरि कथा में तो पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन से मंदिर में भक्त चरित्र के ऊपर कथा होती है। अनेक अनेक भक्तों के दिव्य गुण सुनते हैं हम सब लोग। तो आज रविवार के दिन भगवान के ऐसे दो महान भक्त जिन्होंने हमारे सनातन संस्कृति धर्म की रक्षा में भी बहुत मदद की, ऐसे दो वैष्णव थे, एक किल देव जी महाराज, एक अग्रदेव जी महाराज। ये दोनों वैष्णव करीब 1500 सदी में हो गए थे। वो जो समय था वो स्वर्ण समय था, जिस समय में भारत भूमि में महान वैष्णव का प्राकट्य हुआ था। और उन महान वैष्णव के बीच में स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए थे। तुलसीदास जी, मीरा जी, छठ गोस्वामी आदि वैष्णव, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, बहुत सारे वैष्णव उन दिनों में प्रकट हुए थे भारत में। तो किल देव जी महाराज जी का भी जो जीवन चरित्र है वो हमारे लिए बड़ा शिक्षास्पद है। केल देव जी महाराज जी के पास भी गंगा पुत्र भीष्म जी की तरह इच्छा मृत्यु की सिद्धि थी। कलयुग में ऐसी सिद्धि मिलना ये सामान्य बात नहीं है। इच्छा करेंगे तभी शरीर छूटेगा, स्वयं से उनकी इच्छा होगी, अभी मुझे प्राण त्यागने हैं तब त्यागेंगे। भगवान ने ऐसी उनको कृपा दी थी। तो सामान्य व्यक्तियों के पास ये गुण नहीं होते। और भगवान राम जी के अनन्य भक्त थे। रामानंदी संप्रदाय में। हमेशा अपने आप को राम जी के चरणों में लगा के रखते थे। जिस मठ में भी रहते थे जयपुर के पास गलता गद्दी पे, तो वहां पर भी हमेशा अंतर्मुखी रहते थे। बड़े होने के बावजूद भी कोई कार्यभार वो नहीं संभालते थे, क्योंकि वो हमेशा समाधि जैसी अवस्थाओं में बैठे रहते थे, ध्यान में रहते थे और भगवान के श्रृंगार लीलाओं के दर्शन करते थे, सेवा करते थे। और भक्ति रानी की कृपा होने के साथ साथ उनमें सांख्य और अष्टांग योग आदि के भी अच्छे अनुभव थे, जिसके कारण घंटों घंटों समाधि में बैठ सकते थे वो। तो ये सब उन्होंने भगवान के भजन में लीन होकर प्राप्त किया था। उनके पिता का नाम था सुमेर देव जी। एक दिन के प्रसंग में सुमेर देव जी गुजरात प्रांत में थे। और किल देव जी महाराज मथुरापुरी में राजा मानसिंह के पास बैठे हुए थे और सदैव हरि भजन में अपने मन को लगाकर रखते थे। सुमेर देव जी गुजरात में थे और देव संयोग से उनका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के कारण और उनका पुत्र महान भक्त था, इसके परिणाम स्वरूप भगवान ने उनको अपने धाम में बुलाया। तो आकाश मार्ग से धाम में जब जा रहे थे तो ऊपर की तरफ देखकर उन्होंने पिताजी के दर्शन किए और पिताजी उनको आशीर्वाद भी दे रहे और धन्यवाद भी कर रहे हैं। तुम्हारे जैसा पुत्र था तो आज मैं भगवत धाम जा रहा हूं। प्रहलाद महाराज जी के प्रसंग में भी आता है कि जिनके घर पे कोई उत्तम भक्त हो प्रहलाद जी जैसा, तो ऐसे कुल में पूर्वजों को अनायास उद्धार हो जाता है। ये प्रसंग तब हुआ था जब प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में थे। तो प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, नरसिंह भगवान शांत हुए। फिर भगवान प्रहलाद जी से सर्वप्रथम तो वर मांगने के लिए बहुत आग्रह किए, लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा कि प्रभु मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि आपकी भक्ति की और बदले में उसका मूल्य ले लिया जाए। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को कह रहे कि मेरी खुशी के लिए कुछ मांगो, अपने लिए ना इच्छा हो तो। तो बार बार भगवान के विनती करने पर प्रहलाद जी ने क्या मांगा, हमको मौका मिले तो हम क्या मांगेंगे, ये हमारी अवस्था है। और प्रहलाद जी को मौका मिला तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा, कहते प्रभु ये जो मेरे पिता है ना उनको आप माफ कर दीजिए, उनको नहीं पता था उन्होंने क्या किया। तो नरसिंह भगवान ने क्या कहा, तुम्हारा जैसा बेटा हो, पहले तो नरसिंह भगवान थोड़ी परीक्षा लेते हैं, कैसे तो तुमको बहुत कष्ट दिए, तुमको मारने का प्रयास किया और तुम इनके लिए माफी मांग रहे हो, तो एक महान भक्त की समझ कैसी होती है। कहते प्रभु कौन किसको कष्ट देता है। ये तो मेरे अपने कर्म थे जो मैंने भुगत लिए, मेरे पिताजी का इसमें कोई रोल नहीं है। देखो भक्त है ऐसा, गलती नहीं है फिर भी गलती मानता है, इसलिए ऐसे भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान सामने से बोलते हैं कुछ मांगो, संसार के लोग भगवान के पास आके मांगना चाहते, बार बार मांगते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। यहां भगवान सामने से कहते तुम मांगो कुछ। तो प्रहलाद जी ने जब ये भाव व्यक्त किया ना कि तो मेरे अपने कर्म थे, और अपने कर्मों से जीव संसार में दुख प्राप्त करता है उसमें मेरे पिताजी का क्या दोष। तो भगवान ने कहा तुम्हारा ऐसा, तुम्हारे जैसा पुत्र अगर किसी का हो ना उसका उद्धार तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए मैंने तेरे पिता को तो तेरे कहने से पहले माफ कर दिया। और भगवान फिर वहां कहते कि तुम्हारे जैसा पुत्र हो तो उसके तो एक पिता क्या 21 पीढ़ी का उद्धार कर देंगे हम, इसलिए तेरे परंपरा में आगे कोई आएगा और मान के चलो कि अगर उसने ऐसा कोई अपराध किया जिससे उसका वध होने वाला हो तो भी कहते हम उसको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुल में आगे जन्मेगा ना, इसलिए अभी जिसने जन्म नहीं लिया जन्म लेने वाला है उसको भी नहीं मारेंगे, जाओ। तो बलि जी ने देवताओं को जीतकर देवताओं को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बलि महाराज जी ने, लेकिन भगवान ने उनको मारा नहीं, उनसे युद्ध करके नहीं लिया वापिस, उनसे मांग के वापिस लिया वामन भगवान के रूप में। आगे भी बाणासुर आया प्रहलाद जी के वंश परंपरा में, भगवान कृष्ण के साथ उसने युद्ध किया और आखिर में युद्ध करते घबरा गया, उसको लगा अब कृष्ण मुझे जरूर मार देंगे, तो वो घबरा गया एकदम से। तो कृष्ण ने उसको आश्वासन दिया हम तेरे से युद्ध कर रहे ये सब कुछ ठीक है, तेरे को डरा रहे सब, लेकिन तेरे को मारेंगे नहीं, इसीलिए क्योंकि तुम्हारे परंपरा में आगे प्रहलाद जी थे, इसलिए हमने प्रहलाद जी को वचन दिया, इसलिए तेरे को कुछ नहीं करेंगे हम। तब उसको लगा कि भाई इन्होंने तो मुझे पूरा हरा दिया, बस मारना बाकी रखा था मेरे को, और ऐसी अवस्था में मुझे मुक्त कर दिया, जाओ छोड़ दिया तुमको। कहते अब तो फिर मेरे को कुछ करना पड़ेगा। कहते प्रभु फिर ये जो मेरी बेटी है ना उषा, इसका विवाह ना आपका पौत्र है हाँ अनिरुद्ध, उसके साथ करा देते हैं, मेरी रजामंदी ले लो उसको। तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ और फिर वो द्वारका में आए। ये सब कुछ प्रहलाद जी की दया पर भगवान सब छोड़ रहे, प्रहलाद जी की भक्ति के कारण भगवान ये सारी दया कर रहे। तो ऐसे महान वैष्णव की कृपा से तो अनेक जीवों का उद्धार होता है। तो कीलदेव जी के पिताजी का भी उद्धार हो गया और वो भगवत धाम जा रहे। तो राजा मानसिंह पास में बैठे देख रहे, आप आकाश मार्ग में देख रहे, क्या इशारे कर रहे, क्या बातें कर रहे। कहते हमारे पिताजी जा रहे थे। वो सोचे आकाश मार्ग से कैसे जा रहे थे, अभी तो बराबर के फ्लाइट है तो व्यक्ति जा रहा है, उस समय कैसे जा रहा था। उन्होंने कहा हमारे पिताजी धाम जा रहे थे। अब उसको लगा ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था ना। राजा अपने अनुसार सोच रहा है, भक्त का अपना सामर्थ्यता है। राजा ने क्या किया, कुछ अपने सिपाही बुलाए, कहते जहां कहते ना गुजरात में वहां जाके पता करो इनके पिताजी ने शरीर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। जब आए और पता किया, पता करने बाद जब मानसिंह को बताया ना तो मानसिंह बहुत पश्चाताप किया कि मैंने आप जैसे महान भक्तों के चरणों में अपराध किया और उनके ऊपर अविश्वास किया, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भक्त तो भगवान के इतने निकट होते हैं, कभी कभी तो भगवान उनके अधीन भी हो जाते हैं, भगवान उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, ऐसे भक्त तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने क्यों फिर आपके प्रति अपराध किया है, तो मैंने गलत किया। तो राजा मानसिंह ने बड़ी प्रार्थना की, तो कीलदेव जी महाराज ने ज्यादा उस बात का बुरा नहीं लगाया, ठीक है, ज्यादा मन पे नहीं लिया। केदे जी महाराज जी की प्रभु भक्ति ऐसी थी ना कि बाह्य ज्ञान कभी कभी नहीं रहता था उनको, जहां बैठे हरि भजन में वहीं मस्त हो गए, अंतर्मुख हो जाते थे, जो भी देखते थे अंदर की तरफ देखते थे, बाहर मुख बहिर्मुख नहीं होते थे, बाहर नहीं देखते थे, मतलब कि संसार के प्रति झुकाव नहीं रखते थे, अंतर्मुख थे। तो कभी कभी ध्यान नहीं होता था। एक दिन रामचंद्र जी की सेवा कर रहे थे और ध्यान में आया कि एक पिटारी के अंदर फूलों की माला रखी हुई है, तो राम जी को फूलों की माला पहनाते हैं। अब पिटारी में जैसे हाथ डाला ना, तो बड़ा जोर से एक सर्प ने उनको काट लिया। उन्होंने पकड़ा फूलों की माला समझ के, वो सर्प था, उन्होंने बड़े कस के काट लिया उनको, एकदम से तो हाथ छूट गया उनका। फिर देखे कि फिर दोबारा हाथ डाले, फिर दोबारा काट लिया, तीसरी बार हाथ डाले, तीसरी बार भी काट लिया। कहते सर्प को, सर्प का मन करता है अगर वो भूखा है तो उसकी मैं भी मदद कर देता हूं, वो अपना काम कर रहा है, मैं साधु होके मैं अपना काम कर रहा हूं। तीसरी बार काटने के बाद सर्प खुद ही बाहर आ गया। अब जो जहर निकलना था हो गया, मेरा निकल गया जहर आपकी दया से, ठीक है, अभी मैं आपको प्रणाम करके जा रहा हूं यहां से। तो संतों ने सर्प के अंदर का जहर निकाला अपने ऊपर कष्ट सहन करके, कि तू काट ले भाई, तेरे को जितना काटना है उसी बहाने तेरे को शांति मिलेगी, तेरा जहर निकल जाएगा सारा बाहर। तो सांप भी उनको नमन करके वहां से निकल गया। ऐसे कीलदेव जी महाराज जी का प्रभाव था। तो कहते सांप के काटने के बाद तीन बार ऐसे डसने के बावजूद भी उनका शरीर नहीं छूटा, मृत्यु नहीं हुई। कहते भगवान के चरणों में पूर्ण अनुराग से लगे हुए जो संत होते हैं ना, उनका कार्य व्यवहार सारा भगवान चलाते बाद में। जैसे मीरा ने जहर पिया तो मीरा को कुछ नहीं हुआ, ये सोच के कि चरणामृत है तो मीरा को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब भगवान के प्रति अनन्य आश्रय हो जाता है ना, तो उनका योगक्षेम वहन स्वयं भगवान करते हैं। तो जितने परिमाण में हमारा आश्रय है भगवान के चरणों में, उतने परिमाण में भी भगवान उनका योगक्षेम वहन करते हैं। योगक्षेम वहन करने का मतलब होता है उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। भगवान गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनी परि उपासते तेषा विनित्य युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। कोई अनन्य भाव से अगर मेरे प्रति सेवा में लगा है, प्रीति कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, चिंतयन्तो माम, इस प्रकार अगर कोई मेरी उपासना करता है, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति का जो योगक्षेम है उसको जो वहन करना है वो मैं करूँगा, उसको आवश्यक होगा वो दूंगा, उसकी रक्षा भी करूँगा, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊँगा मैं। तो भगवान ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं होता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति इतना अनुराग नहीं, इसलिए हमारे साथ ये घटना नहीं होती। लेकिन जिनका अनुराग ऐसे प्रहलाद जी के साथ होती है कि नित्य प्रतिनित्य नए नए तरीकों से मारने का प्रयास करने के बावजूद भी प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने त्रिलोक को जीता था, कोई भी दानव कह लीजिए या कोई भी देवता कह लीजिए, उनके साथ सामने खड़ा नहीं होता था। एक छोटे से बालक ने बिना कुछ विरोध किए, बिना लड़ाई किए हिरण्यकश्यप को हराया था। किन के ऊपर आश्रित रहकर? मात्र भगवान के ऊपर आश्रित रहकर। तो निश्चित भगवान करते, उसमें संशय नहीं है, लेकिन आपका समर्पण 1% है तो 1% के अनुरूप होगा। भगवान के प्रति समर्पण 2% है तो 2% के अनुरूप होगा। अगर 100% समर्पण है तो भगवान 100% उसका भार वहन करते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो कीलदेव जी महाराज जी का शरीर नहीं छूटा, उसके पीछे का कारण था भगवान के प्रति अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, आश्रय, जिनका भार भगवान ने स्वयं अपने ऊपर उठाया था, इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में खड़ा नहीं रह सकता। कीलदेव जी महाराज मथुरापुरी में जब रहते थे तो एक दिन यमुना स्नान करके रास्ते से जा रहे थे, चलते चलते ज्यादा भावुक हो गए तो वहीं रास्ते पर ही बैठ गए, और रास्ते पर बैठ के क्या किया उन्होंने, भगवान के ध्यान में, भगवान की सेवा पूजा में लग गए। अब उनको ध्यान नहीं है कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अब उसका उनको कोई ध्यान नहीं है। तो उतने में क्या हुआ कि एक मुसलमान बादशाह दिल्ली से निकला हुआ था अपनी पूरी सेना लेकर, और मथुरापुरी से आगे की ओर प्रस्थान कर रहा था। तो उसके कुछ सेवक लोग थे ना, वो आगे आगे रास्ता बनाते थे, कोई झाड़ी बीच में आते तो उसको छटाई करा के रास्ता तैयार करते थे आगे। तो ये बीच रास्ते में बैठे हुए थे, सैनिकों ने बार बार उनको जगाया, वो उठ जाइए, पास में बैठ जाइए, बार बार जगाने का प्रयास किया, लेकिन हिले नहीं वहां से, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। इन्होंने जाके राजा को समाचार दिया कि महाराज ऐसे ऐसे एक फकीर रास्ते में बैठा हुआ है, बार बार उसको प्रयास किया लेकिन वो हिलता ही नहीं। तो ये जो बादशाह था यवन था, स्वभाव से बड़े क्रूअल होते ये लोग, तो इन्होंने क्या कहा, उसके माथे में कील लगा दो, अपने आप उड़ जाएगा, डंडा पड़ेगा तो सीधा हो जाएगा। अब ये अपने भजन में मस्त थे, सैनिक आए, बड़ा सा कीला और हथौड़ा लेके आए माथे पे लगाने के लिए, जैसे ही माथे को स्पर्श कराए ना, वो कील पिघल के नीचे उतर जाए, फिर दूसरी कील लेके माथे पे लगाने का प्रयास करे, वो भी पिघल के नीचे उतर जाए। उन्होंने राजा को आके समाचार दिया, महाराज ये तो कील लगाते वो तो पिघल कर नीचे उतर जाती है। राजा को लगा ये कोई सामान्य घटना नहीं है, वो खुद पालकी से उतर कर आया और आके दंडवत प्रणाम किया, कहते महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया है, हमने आपको समझा नहीं, आपको कष्ट देने का प्रयास किया, हमको माफ कर दीजिए। सभी लोग बड़ी प्रार्थना करने लगे, तो साधुओं को ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाना था, वो तो अपने काम में लगे थे, ये तो कार्य भगवान ने किया, उन्होंने कोई ज्यादा नहीं कहा, ठीक है करके उठ के चल दिए, जैसे कोई घटना हुई नहीं, ऐसे उन्होंने कोई उसको ना याद रखना चाहा और सामान्य समझ कर निकल गए। लेकिन राजा के मन में बात अटक गई, व्यक्ति सामान्य नहीं था लेकिन व्यक्ति बड़ा महान था, एक दिन इसको अपने महल में बुलाना चाहिए। फिर तो कीलदेव जी महाराज जी का पता ढूंढ के उनको महल में बुलवाया एक दिन, कहते महाराज आपको बुला रहे, मुसलमान बादशाह बुला रहे, आप चलिए। कहते हमको कोई इच्छा नहीं है वहां पर आने की, हम अपनी जगह पर ठीक है। तो बादशाह की तरफ से मुख्यमंत्री आए, उन्होंने बड़ी अनुनय विनय की कि बादशाह आपकी कुछ सेवा सत्कार करना चाहता है, उनसे जो गलती हुई थी उसके बदले में आपकी कुछ सेवा करके उन्हें संतुष्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके आइए। इनके मन में कोई सेवा कराने की इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी गए। गए तो वो बादशाह उनको पूछता है कि हम आपके लिए उत्तम उत्तम प्रकार के पकवान बनवाते हैं, आप उसको ग्रहण कीजिए, या फिर अगर आपका कोई अलग से नियम हो तो मैं एक ब्राह्मण लगवा देते हम, आप ब्राह्मण को बोलिए वो बना देगा, वो जैसा आपकी इच्छा हो। कीलदेव जी महाराज ने खाना तो था नहीं वहां पर, ऐसा कुछ ग्रहण तो करना नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है ब्राह्मण लगाओ। ब्राह्मण लगाया, ब्राह्मण आया, कहते महाराज आप क्या ग्रहण करना चाहोगे? कहते हम खिचड़ी ग्रहण करना चाहेंगे, खिचड़ी बनाओ जाके। अब खिचड़ी बनाने के लिए ब्राह्मण ने दाल चावल इकट्ठे करके धोए, और खिचड़ी बनाने के लिए जा रहा है, दाल चावल अलग हो गए। वो ब्राह्मण कहते हैं ये अलग कैसे हो गए? वो फिर इकट्ठे करके खिचड़ी बनाने जा रहा है, दाल चावल फिर अलग हो जाते हैं। दो तीन बार ऐसी घटना हो रही है। उसने महाराज से समाचार पहुंचवाया, महाराज ये खिचड़ी तो नहीं बनेगी, और दाल चावल इकट्ठे करते वो अलग हो जाते। अब राजा को लगा ये तो कुछ सामान्य तो नहीं थे, हमने पहले भी अनुभव किया था। उन्हीं को ही बुलाया, कहते महाराज आप क्या समझाना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। कहते खिचड़ी में दाल चावल इकट्ठे नहीं रह सकते, तो जबरदस्ती तुम हिंदुओं को मुसलमान बना बना के उनको ऊपर अत्याचार गुजर रहा है, वो कैसे सुख से रहेंगे? दोनों का अपना अपना विचार है, अपना अपना धर्म, अपना अपना काम है, दोनों को अपनी अपनी जगह रहने दे, क्यों उनको उनके ऊपर अत्याचार गुजार रहे हो, क्यों उनको परेशान कर रहे हो? राजा को इस बात का ज्ञान कराने के लिए कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो अत्याचार है, जीवों को कष्ट दे रहे हो, इस बात का ज्ञान कराने के लिए महल में गए और बोले खिचड़ी बनाओ, जबकि खाने नहीं थी खिचड़ी। उस दिन उसने उनको वचन दिया, जब तक मैं जीऊंगा मेरी शासन प्रणाली रहेंगी तब तक मैं किसी एक हिंदू को भी कष्ट देकर मुसलमान नहीं बनाऊंगा, ये मेरा वचन रहा आपसे। तो ऐसे संतों ने इस प्रकार हमारे संस्कृति की रक्षा की हुई थी। महान वैष्णव के कृपा से तो निश्चित तौर से संस्कृति की रक्षा होती है। नामदेव जी महाराज जी को भी ऐसे भी जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे मुसलमान दरबार में, और सुना था कि बड़े चमत्कारी है, बड़े चमत्कारी है। तो क्या हुआ, नामदेव जी को बोला कुछ चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी कहते हमको चमत्कार नहीं जानते, हम तो बस हमारा बस प्रभु भजन करते रहते, हमको कोई चमत्कार नहीं आता। कहते नहीं नहीं चमत्कार दिखाओ, हमने सुना आप बड़े चमत्कार करते हैं। तो नामदेव जी सोचे इसको क्या चमत्कार दिखाए, हाँ ये तो लायक भी नहीं। तो मुसलमान ने क्या किया, उकसाने के लिए सभा में गाय को बुलाया, नामदेव जी के सामने गाय का गला काट दिया। नामदेव जी वहीं गाय के पास बैठ गए, बड़ा रोने लग पड़े, बड़ा दुख हो रहा है उनको गाय को देखकर, तड़पता हुआ बड़े कष्ट में। फिर भगवान से बड़ी प्रार्थना की उन्होंने, और भगवान से प्रार्थना करके गाय को जीवित करवाया। जब गाय को जीवित करवाया ना, उसने देख लिया कि इसमें बड़े चमत्कार बड़ी शक्ति है इसमें, तो अगर ये चाहे तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है। तब कहते ना हम आपकी क्या सेवा करें बताइए। कहते बस यही सेवा है कि तुमने किसी भी हिंदुओं को परेशान नहीं करना, ना गायों का वध करना, ना उनके ऊपर अत्याचार करना। तो उस शासक ने भी नामदेव जी को वचन दिया कि हम नहीं कुछ परेशान करेंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक नहीं करेंगे। तो ऐसे संतों ने अनेक अनेक रक्षाएं कराई है। रामानंदाचार्य जी के प्रसंग में भी आया था कि रामानंदाचार्य ने एक बार शंख बजाया था ना, तो पूरे भारत भर के मौलवी और मुल्लाओं की जबान बंद हो गई थी, लॉक कर दी थी उन्होंने, शब्द नहीं बोल सकते थे, कोई नमाज अजान नहीं कर सकते थे। जब सब लोग इकट्ठे आए, उनके पास माफी मांगी ना, हमारे से गलती हो गई है, हमको माफ कर दीजिए, उन्होंने 12 चीजें लिखवाई थी कि आप 12 चीजें लिख कर दो, हिंदुओं को परेशान नहीं करोगे, उनकी बहू बेटियों को उठाकर नहीं ले जाओगे, उनको अपने उत्सव करने दोगे, जजिया कर नहीं लगाओगे, ऐसी 12 चीजें लिखा के दी, और इसके ऊपर साइन करा के लाओ अपने बादशाह से, तब जाके मैं आप सब लोगों को मुक्त करूंगा। तो उन्होंने इस बात को मान्य किया, तब रामानंदाचार्य ने सबको मुक्त किया था। तो एक वैष्णव ने उस समय पूरे भारत में हिंदुओं की रक्षा करवाई थी। तात्पर्य है कि हिंदू शब्द से तो हम सीधा सनातन धर्म को ही जोड़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृति तो हमारी अनादि पुरातन है, सत्युग द्वापर त्रेता से चली आ रही संस्कृति है, कोई आज ही की नहीं है। जिसमें भगवान की जो ये भक्ति हो रही है तो अनादि काल की भक्ति है, इसलिए इस सनातन संस्कृति में ही सब कुछ है। भगवान की जो गीता भागवत आदि के जो ज्ञान है वो इसी संस्कृति में है, इसलिए इसकी रक्षा करना चाहिए और इसकी रक्षा से हमारी भी रक्षा होती है। धर्म रक्षते रक्षिते, धर्म की रक्षा करने से निश्चित व्यक्ति की अपनी रक्षा भी होती है, ये स्वयं शास्त्र भी बोलता है। तो महान वैष्णव लोग समाज के प्रति जब अपना दया का भाव दिखाते हैं तो अनेक लोगों को अच्छे मार्ग पर भी लाते हैं। तो कीलदेव जी महाराज ने ऐसे अनेक कृपा की और फिर बाद में जब उनको पर्याप्त मात्रा में संसार में उन्होंने जिया और भगवान का संदेश हुआ कि अभी आपका मन हो तो आइए हमारे पास, तो उन्होंने साधु मंडली में बैठे हुए समाधि जैसी अवस्था में बैठ गए और भगवान के महान भक्त थे, भगवान की लीलाओं के दर्शन भी करते थे और योग अभ्यास भी उनको था, अष्टांग योग को भी जानते थे। तो ब्रह्म रंधन से उन्होंने अपने प्राणों को निकाल के भगवत धाम को चले गए। तो ऐसे कीलदेव जी महाराज ने अनेक जीवों के लिए बड़े भक्ति में कार्य किए और लोगों को मार्गदर्शन भी दिए। तो कीलदेव जी महाराज जी के साथ में ही गलता गद्दी पर वहां पर एक वैष्णव रहते थे, उनका नाम था अग्रदेव जी महाराज। ये भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अग्रदेव जी महाराज भी, अग्रदेव जी महाराज वो भी राम जी के अनन्य भक्त थे और सीता जी की एक सखी थी चंद्रकला जी, उसके अवतार थे ये। अनेक वैष्णव ने शांत भाव में, दास्य भाव में, सखा भाव में रामचंद्र जी की भक्ति का विस्तार किया था, लेकिन मधुर भाव में रामचंद्र जी की भक्ति का विकास ज्यादा नहीं हुआ था। तो जानकी जी के साथ रामचंद्र जी की जो मधुर लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जो वर्णन करने के लिए स्वयं जानकी जी की जो सहेली थी, सहचरी चंद्रकला जी, उन्होंने अग्रदेव जी महाराज जी के रूप में जन्म लिया था। विक्रम संवत 1543 में उन्होंने फाल्गुनी शुक्ल द्वितीया को राजस्थान के एक पवित्र ब्राह्मण घर में जन्म लिया था और जन्म से ही उनके अंदर बड़े विलक्षण लक्षण थे। ये जब घर छोड़कर जब जयपुर में आए थे तो उस समय वहां पर जयपुर में गलता गद्दी पर कृष्णदास पै हरिजी महाराज विराजते थे, वो सिर्फ द्रव्य पर जीते थे इसलिए उनको पै हरि बोलते थे, भगवान के महान भक्त थे। अग्रदास जी उनके पास आए और उनसे बड़ी विनती की कि हम आपकी शरणागति स्वीकार करना चाहते हैं, आप हमारे पर दया कीजिए। तो पै हरिदास जी ने देखा कि ये बड़े योग्य है, शिष्य की भी योग्यता होती है जैसे गुरु की योग्यता होती है ना, कि गुरु भगवत प्राप्ति कराते हैं, भगवत ज्ञान दिलाते हैं, शास्त्रों में पारंगत होते हैं, भगवान के चरणों में अनन्य श्रद्धा होती है, भक्ति में लगे होते हैं, अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, ऐसे शिष्यों में भी कुछ योग्यता होनी चाहिए कि गुरु समर्पण होना चाहिए, भगवत समर्पण होना चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, दास भाव होना चाहिए, विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने की उत्कंठा होनी चाहिए, संसार से उदासीन वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, अनेक ऐसे लक्षण हो ना तब भी वो योग्य शिष्य बनता है। गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है, अच्छा शिष्य बनने के लिए भी योग्यता चाहिए, उसके लिए भी व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार अच्छे महंगे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए भी विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है, एडमिशन तो बाद में देंगे, पहले ये तो बताओ कि आप स्कूल में आने लायक भी हो कि नहीं हो, एडमिशन तो बाद में करेंगे। और अभी तो ऐसा हो गया है कि अकेले विद्यार्थी की परीक्षा नहीं करते, माता पिता की भी परीक्षा करते हैं। चलो विद्यार्थी अगर समझदार है लेकिन घर पे कोई समझाने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तो हमारे स्कूल का तो नाम खराब हो जाएगा। इसलिए माता पिता भी ओके चाहिए हमको, तो माता पिता पास होंगे परीक्षा में, विद्यार्थी पास होगा परीक्षा में, तब तो एडमिशन मिलेगा, पढ़ाई तो बाद में होगी, तब तो वो स्टूडेंट बनेगा। इसी प्रकार योग्यता होती है ना, और जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी महान वैष्णव के चरणों में समर्पित करता है उस दिन वो भक्त नहीं बनता, उस दिन तो वो शिष्य बनता है। उस दिन तो उसने इस भक्ति राज्य में प्रथम कदम रखा होता है, फिर बाद में गुरुजनों के मार्गदर्शन में अपना सुधार कराते 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 योग्य बनता है और अनेक प्रकार के अपने दोषों से मुक्त होता है। और ऐसा जीवन पर्यंत करते 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 जब समय आता है तब कभी वो भी एक योग्य संत या एक योग्य गुरु बनने के लायक हो जाता है। जितने भी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कभी ना कभी विद्यार्थी रहे होते हैं, तभी जाके टीचर बनते हैं। इसी प्रकार कहते योग्य गुरु का एक लक्षण ये भी होता है कि कभी ना कभी वो एक योग्य शिष्य जरूर रहे होते हैं, तभी जाके योग्य गुरु की पदवी पर बैठते हैं। इसलिए सर्वप्रथम योग्य शिष्य होना ये बहुत जरूरी है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो कृष्णदास परिहरी जी ने विचार किया ये तो बड़े योग्य है, उनके भावों को देखा ना, उनको महसूस हुआ कि इनके अंदर अनेक सद्गुण है और लालसा भी है भक्ति करने की और संसार के प्रति सामान्य उदासीन भाव है, अनेक अनेक चीज संसार में भोग भोगने की, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, उदास, ठीक है नहीं चाहिए, ऐसा एक्साइटेड मैन नहीं है, नहीं चाहिए, ठीक है, उदास, स्वाभाविक रूप में उनके प्रति वैराग्य बुद्धि है। तब उन्होंने उनको दीक्षा दी और जब गुरुजी ने दीक्षा दी तो उन्होंने सोचा कि आज शिष्य को ना हमने दीक्षा दी है तो आज कुछ उत्सव जैसा भी होना चाहिए, अनेक साधु संत आए और अनेक साधु संत इनको आशीर्वाद भी देते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि जब शिष्य बनता है ना व्यक्ति तो संतों के आशीर्वाद लेने जाते हैं, भिक्षा करने के लिए जाते हैं। हमारे संप्रदाय में भी, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में भी, जब कोई दीक्षा लेता है ना तो वो अपने अहम का त्याग करते हुए, या अहम का त्याग करने की भावना है ऐसा दिखाते हुए भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा में जो भी मिले लाके गुरु को अर्पण कर देते हैं, ऐसा जरूर नहीं कोई द्रव्य देता है, कोई पदार्थ भी देता है। हम भिक्षा मांगने गए थे तो हम लोगों ने हमको टमाटर भी दिए थे, कुछ सब्जियां भी दी थी, किसी ने 1 रुपया दिया था, किसी ने 5 रुपया दिया, किसी ने धुतकार भी दिया था, ठीक है एक आके गया, अभी आगे जाओ, ठीक है तो आगे ही जाना पड़ेगा आपको, यही इसीलिए तो भिक्षा मांगने जाते हैं ना। वो नया जन्म होता है शिष्य का आध्यात्मिक जीवन में, उस दिन वो प्रवेश उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा होता है, भौतिक जगत के बंधनों को छुड़ाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रवेश कर रहा होता है। तो उस समय में बहुत कुछ सीखना भी होता है, अनेक अनेक अच्छे वैष्णव को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद भी लेने होते हैं जो पहले ही भक्ति मार्ग में लगे होते हैं कि आज हम भी भक्ति करने जा रहे हैं, आज एक गुरु ने हमको स्वीकार किया तो हमको भी आशीर्वाद दो, ताकि हमारा भी कल्याण हो। तो कृष्णदास पयारी जी ने सोचा कि बहुत सारे वैष्णव आते और उनको यहाँ खूब भोजन प्रसाद कराते, एक उत्सव जैसा होता और सब इनको आशीर्वाद भी देते तो अच्छा हो जाता। लेकिन आश्रम में कुछ था ही नहीं, उनके मन में भाव आया है लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। कृष्णदास पयारी जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे लेकिन वैराग्य व्यक्ति थे। उनके शिष्य में आमेर के नरेश पृथ्वीराज जी उनके शिष्य थे। अब शिष्य को बोलते तो काम हो जाता था, लेकिन जो सच्चा गुरु होता है ना, वो कहते शिष्यों की आस नहीं करता। जो गुरु करे शिष्य से आस, साम भजन से होए उदास। जो शिष्य के ऊपर आस करके गुरु पद के ऊपर बैठा है वो तो हरि के भजन, शाम के भजन से उदास ही होना पड़ेगा उसको। इन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहलवाया, लेकिन अचानक से उसी दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए आमेर से पृथ्वीराज जी वहां पर पहुंच गए कि आज गुरुजी का दर्शन करके आते हैं, और उसी दिन अग्रदेव जी की दीक्षा हुई। जब वो पहुंचे वहां पर तो उनको समाचार मिला कि आज गुरुजी के हृदय के अंदर ये भाव था कि आज बहुत भंडारा होना चाहिए। उन्होंने, अब राजा थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप भंडारे के लिए आमंत्रण भिजवाइए, व्यवस्था हम करेंगे सारी, आज ही के आज ही भंडारा खिलाना है, आज ही के आज ही कैसे बुलाए लोगों को। गुरुजी ने क्या किया, सिद्धियों को बुलाया। कहते दसों दिशाओं में जितने भी साधु हैं ना, सभी साधु को ले आओ यहां पर। ढेर के ढेर साधु आ गए और आमेर नरेश ने विशाल भंडारा करवाया। पंक्तिबद्ध वैष्णव लोग प्रसाद ले रहे, उनको जो मन इच्छा हो मन भावन प्रसाद पा रहे। जब सभी संतों का प्रसाद हुआ तो कृष्णदास जी ने विनती की, ये हमारे शिष्य है अग्रदेव जी, आप सब लोग इनको आशीर्वाद दीजिए। सारे वैष्णव ने हाथ खड़े करके, उस समय वो बालक थे ना, उनको आशीर्वाद दिए। संतों की कृपा से भक्ति शीघ्र होती है। अग्रदेव जी महाराज वैसे तो थे ही जानकी जी के पार्षद, लेकिन यहां पर भी इतने संतों का आशीर्वाद मिल गया तो अग्रदेव जी महाराज को भक्ति मार्ग में सिद्ध होने में टाइम नहीं लगा, तुरंत ही सिद्ध हो गए। अग्रदेव जी महाराज जी की विशेषता यह थी कि वो अपने जीवन का क्षण भी भगवत भजन के अलावा व्यर्थ जाए ना उसका बड़ा ध्यान रखते थे, जाने नहीं देते थे, पूरा पूरा समय लगा देते थे कैसे भी करके भगवत चरणों में, कहीं थोड़ा सा भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जैसे काकभूषण जी महाराज युगों युगों से राम जी की कथा करते हैं, थकते नहीं, लेकिन समय को पूरा भगवान की सेवा में लगा कर रखते हैं। जैसे शिव जी कहते ना, उमा कहो तो ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये उमा, ये तो जगत सारा सपने जैसा है, सही बात है ना, तो इस जगत में हरि का भजन ही है। अब शिव जी जैसे महान व्यक्ति अगर कोई बात कह रहे, कोई ज्ञान दे रहे, तो व्यक्ति को उस ज्ञान को बिना कोई विलंब किए या बिना कोई तर्क किए स्वीकार कर लेना चाहिए कि हरि भजन ही सत्य है, बाकी तो सारा जगत सपने जैसा ही है। ये बात इन्होंने जान ली थी, इसलिए वो क्या करते थे, अपने समय को पूरा पूरा भगवान की सेवा में खर्च कर देते थे। प्रसंग आता है तो ब्राह्मणों का, दो ब्राह्मण यात्रा करने निकले थे, दोनों के पास 100-100 रुपया था। अब दोनों व्यवहार करेंगे तो अपनी सूझबूझ, अपनी वृत्ति के अनुसार व्यवहार करेंगे। एक ब्राह्मण जहां पर रास्ते में कोई मंदिर आता वहां कुछ पैसा चढ़ाता, जहां कोई रास्ते में साधु मिलता उसको कुछ दान दक्षिणा देता, अगर सामने से उसको रास्ते में कुछ मिल जाए तो वो भी आगे मौका देके वो भी दे देता। और दूसरा वाला उस बात का पूरा पूरा ध्यान रखता था कि आठ आना में बिगड़ना नहीं चाहिए। वो रास्ते में क्या करता, इधर उधर से भिक्षा मांग के खा लेता, लेकिन पैसा पूरा बचा के रखता। जहां भंडारा चलता हो उसमें खाए, उसमें से पदार्थ मिले तो वो जोड़ के इकट्ठा भी करे। आगे जाके जंगल के रास्ते से तक पहुंचे तो उतने में क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण थे उदार, उनके तो 100 रुपया रास्ते में पूरे पूर सेवा में लग गए, खर्च हो गए। और ये इस बात को लेकर बड़ा आनंदित है, बड़ा गर्व का अनुभव कर रहा है, हम 100 लेके चले थे, 125 कर दिए। यात्रा की यात्रा, 100 के 125 किए। अब क्या हुआ, संयोग बस जंगल में आ गए डाकू। अब दोनों को धर लिया उन्होंने। अब इन्होंने तो दिखा दिया भाई फक्कड़ गिरदारी, कुछ नहीं है। अब ये आनाकानी करे, समझ में आया इसके पास कुछ है, 125 के 125 एक ही बारी में ले लिए। तात्पर्य कथा का ये है कि इसी प्रकार समय अगर भगवान के चरणों में व्यक्ति अगर लगाता रहता है, पूरा का पूरा जीवन अगर भगवान के चरणों में लगाता रहता है, तो यही सेवा का अभाव, यही उपयुक्त है। अन्यथा व्यक्ति सोचे मैंने खूब बचाया है, आखिर में मृत्यु एक ही बार आएगी, मृत्यु सर्वस्य हरणम से चाह, मृत्यु एक ही बार आएगी। अच्छा, बहुत कुछ एक ही बारी में सब हरण करती है, और टाइम लगा के हरण नहीं करती है, पार्ट में नहीं लेती है, एक ही बारी में लेती है। तो कहते समय तो वैसे भी जाना ही है, सारी चीजें तो वैसे भी जानी है। तो कहते बुद्धिमत्ता तो इसमें थी कि अपने को अपनी बुद्धि को भगवान में लगाते थे, ये बुद्धिमानी का काम था। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति जड़ जगत में जब अंधा आसक्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का ये भजन और ये जीवन कितना मूल्यवान है उसकी समझ में नहीं आता। समय को तो ऐसे बर्बाद करता है कि 2-4 घंटा टीवी देख लिया, 1-2 घंटा बातें कर लिया, कोई काम नहीं तो 8-10 घंटा सो लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टहलने चले गए, क्या किया। कहते कार्य जो किया उसका कोई परिणाम नहीं निकला, लाभ नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन समय तो गया ना। तो ऐसा ही एक अबोध किसान की कथा आती है। अबोध किसान खेती कर रहा है, बैल के पीछे लगाया उसने, हल लगाया हुआ है, हल को नीचे घसा के खेती कर रहा है उपजाऊ भूमि बनाने के लिए। अब वहां पर एक जगह पर अटक गया हल, उसने खोद के देखा तो एक छोटा सा चरू निकला उसको, उसका मुंह खोल के देखा तो उसमें अनेक दिव्य दिव्य ऐसे मोती दिखाई दे रहे उसको। लेकिन क्या है, उसको दिख रहे एक सरीके के कांच के टुकड़े यहां क्या कर रहे हैं, किसी के पैर में लग ना जाए इसलिए लगता है जमीन में लगा के रखे इसको, वो कांच चला जाता है ना पैर में, जमीन पे लगा के रखे है। कहते एक जैसे पत्थर है बड़े काम के हैं, वैसे तो मिलते नहीं, तो क्या करेगा। अब ये हल वगैरह का काम करके बैठ गया ऊपर खेत के ऊपर, वो बनाते ना जैसा मचान जैसा बनाते, उसके ऊपर बैठ गया। अब एक पशु आए ना, एक पक्षी आए ना, ऐसे ताक लगा के बैठे, एक पक्षी आए तो उड़ा दे उसको एक सरीके के, अब ये उड़ाता रहे और गर्व, उसको बड़ा आनंद हो रहा है कि आज ऐसे पत्थर मिले थे कि पक्षी आए नहीं, एक आध दो बच गए थे घर ले आए। अब क्या हुआ, घर ले आए तो उसका एक छोटा बालक था, उसको खेलने दे दिया। छोटा बालक कभी मुंह में डाले कभी बाहर निकाले, उतने में घर के आगे से जौहरी जा रहा था। अब जौहरी ने देख लिया कि छोटे से बालक के हाथ में लाल रतन है, और मुंह में डाल के बाहर निकाल के इतना साफ कर दिया उसको उसने बढ़िया से। जौहरी आया, हाथ में देखा, ये तो मोती हीरे से भी ज्यादा महंगा लाल रतन है। उसकी माँ को बुलाया, अगर मैं इसके बदले में आपको प्रचुर धन दूं तो, उसने झट से ले लिया, हमारे पति आएंगे ना तब बात करेंगे। थोड़ी तो बुद्धिमान थी वो, पति आए कहते इस एक के बदले में वो जौहरी बहुत धन देने के लिए तैयार है, बात करो जरा आप उससे। अब जौहरी को घर पे बुलाया, कहते आप क्या देंगे बताइए, कहते आप क्या इच्छा करते हो बताइए। अब उसने पूरी शक्ति लगा के जितना उसका हृदय मानता था उतना बताया, क्योंकि उसको भी डर लग रहा था इतना बताऊंगा तो, अब बिचारी की जैसी अवस्था थी ना उसी के अनुरूप उसने मुंह खोल दिया। उसने मिनट नहीं लगाई, जौहरी ने बोला मिल जाएगा। उसको लगा मैंने कम बोल दिया था, ज्यादा बोलना चाहिए था। कहते लेकिन हम आपको ये देंगे, लेकिन पहले बताइए आप इस एक पत्थर के बदले में इतना पैसा देने के लिए तैयार क्यों है, ये तो बताओ पहले। अब जौहरी कहता है कि ये लाल रत्न है ये, और लाल रत्न बड़ा दुर्लभ होता है, ये आसानी से मिलता नहीं है, इसका तो जितना मूल्य लगाया जाए उतना कम है। अब वो जोर जोर से रोने धोने लग पड़ा। अब जौहरी कहता है शांत हो जाइए, हम आपसे ले लेंगे, आपको पैसा देंगे। अब वो रोए जा रहे, कहते रो क्यों रहे हो भाई, ये एक नहीं था, ऐसा तो भरा पड़ा था, वो मैंने चिड़िया उड़ा दी सारी। ये वास्तविकता है, एक का इतना मूल्य जीवन नहीं कमाना। हाँ, जीवन पर आराम से बैठना, कमाई की जरूरत नहीं है, पूरा मटका भर के था, लेकिन अब रो रहा है। जब चला गया ना, तब इसी प्रकार वृद्ध अवस्था में व्यक्ति सोचे मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मेरे को समझ में आ गई, अब पूरा चोटी बांध के भजन करूंगा। लेकिन उस समय नहीं है तो सिर्फ समय ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, धन भी है, परिजन भी है, सब है। उस समय व्यक्ति के पास एक ही चीज का अभाव होता है, वो समय। और जिस समय को हमने पहले कैसे लगाया होता है, मैं फ्री बैठा, कोई काम नहीं है, आ जा तू भी गप्पे मारते। अब बाद में कहता है पैसा ले लो, जो करना है कर दो, बस समय थोड़ा बढ़ा दो मेरा। तो अग्रदेव जी महाराज समय का मूल्य इतना समझते थे कि अपने संपूर्ण जीवन को भगवत चरणों में ऐसे लगा के रखते थे ना कि थोड़ा सा भी समय बर्बाद ना हो उनका। यही संतों की पहचान होती है कि संत लोग अपने आप को भगवत चरणों में लगा कर रखते हैं। अग्रदेव जी महाराज हरि भजन करते थे तो हरि भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर वाक सिद्धि अनेक प्रकार के कार्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं, वो अलग से उसके लिए प्रयास नहीं करते, ना कोई चमत्कार दिखावा करते हैं, लेकिन भक्ति के पीछे पीछे वो सारी चीजें उनको मिलती रहती है। राजा मानसिंह अपने 10,000 सैनिकों को लेकर विजय यात्रा के लिए निकले हुए थे, तो रास्ते में वहां गलता गद्दी पर अग्रदेव जी महाराज जी से सोचा आशीर्वाद ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अब राजा आया है, अग्रदेव जी महाराज ने सोचा कि कोई मेहमान घर पे आगंतुक आया हो तो कुछ तो देना चाहिए उसको, तो अपने शिष्य थे नाभाजी, नाभाजी को बोला कि राजा आए हैं, हमको कुछ देना चाहिए, तो उनको देने के लिए कुछ लाओ। नाभाजी 10 केले ले आए, कहते अभी जो है वो 10 ही केले है, कहते कोई नहीं सबको बांट दो। 10 केले 10,000 को बांटे और फिर भी नाभाजी 10 केले लेके आखिर में खड़े हैं वहां पर, कहते गुरुजी ये तो बच गए। ये था अग्रदेव जी महाराज जी की भक्ति का प्रताप। इसलिए अनेक राजा लोग भी अग्रदेव जी महाराज जी के प्रति बड़ी आदर बुद्धि का भाव रखते थे, और वो लोग भी राजा को इस तरीके से शिक्षा देते थे कि राजा हमेशा धर्म के नियमों का पालन करे। अगर राजा एक ऐसे गुरु के कहने पर अगर धर्म के नियम का पालन करेगा तो प्रजा में कितने लोगों को सुखी करेगा, कितने लोगों के बीच में धर्म का ज्ञान फैलेगा, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो इसी प्रकार महान संतों की कृपा से तो संसार में अनेक अनेक लोग धर्म के रास्ते पर आ सकते हैं। तो ऐसे अग्रदेव जी महाराज जी की बड़ी महिमा थी, और जब तक जिए वो तब तक उन्होंने अपने आप को हमेशा भगवान के चरणों में लगा के रखा। और उनके जो शिष्य थे नाभा गोस्वामी, वो भी इतने महान वैष्णव हुए थे बाद में, जिन्होंने भक्त चरित्रावली की जो रचना थी वो उन्होंने ही की थी। जन्म से अंधे होने के बावजूद भी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो आंखें खुल गई, तुरंत देखना शुरू कर दिया उन्होंने, ऐसे वैष्णव थे सब। तो भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमारे हृदय में प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम सब लोगों को भी किस प्रकार से अपने समय को, अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, और अपना ये जो मनुष्य जीवन है ना उसको किस प्रकार से सार्थक करना चाहिए, उसका उद्धार करना चाहिए। तो संतों के चरित्र से प्रेरणा भी मिलती है और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ऐसे महान वैष्णव के चरणों में बस यही निवेदन है कि उनकी कृपा से ये जो मनुष्य जीवन है हमारा सफल हो जाए। हरे कृष्णा। तो एकत्रित सभी भक्तों माताओं का धन्यवाद। आज का जो प्रसाद है वो श्रीमान मफत भाई जी की तरफ से है और उनके परिवार के लोगों की तरफ से। तो आइए। हाँ, बंद कर दिया।